पुस्तक 6 लेक्चर नंबर 3। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम
नमः
सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वर्चायाणं। नमो लोए सवसाहूणं। नमियूणनंतजिनं। अनंतनानेन दिठसवट्टं। कम्मपदे सविहत्तिं। वोच्छामी जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा इतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। ये जो छठवीं पुस्तक है उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 14 पर आ गए हैं। ये प्रदेश विभक्ति के अधिकार में कर्म परमाणुओं की संख्या जीव की सत्ता में कितनी है, इसकी चर्चा चलेगी। उत्कृष्ट किसके होता है उसको कहते हैं गुणित कर्मांशिक, और जिसको जघन्य में जघन्य होता है उसको कहते हैं क्षपित कर्मांशिक। गुणित कर्मांशिक की बात हमने देखी, अब यहाँ क्षपित की बात चल रही है। तो हमने देखा था ये क्षपित कर्मांशिक वाला जीव कौन सा है, तो हमने देखा था जो 70 कोड़ाकोड़ी सागर में पल्ले के असंख्यात वे भाग कम काल तक सूक्ष्म निगोदिया में रहा, अपर्याप्तों में अधिक समय रहा, पर्याप्तों में कम समय रहा। अकेले अपर्याप्त में क्यों रखा, नहीं रखा, अकेले अपर्याप्त में रखना था ना, क्यों नहीं, हाँ अंतर्मूर्त लगातार अपर्याप्तों के भोग करते रहे तो भी अंतर्मूर्त, और पर्याप्तों के
अंतर्मूर्त
सूक्ष्म में तो
अंतर्मूर्त
वे भी अंतर्मूर्त है। हाँ तो यहाँ अपर्याप्तों का काल अधिक रहा, पर्याप्त का थोड़ा रहा। आयु का बंध उत्कृष्ट योग के द्वारा लिया, जघन्य योग अधिकतर रहा, मंद संकलेश वाला रहा। उसके बाद हमने देखा बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त में उत्पन्न हुआ, उसके बाद मनुष्य हुआ, जल्दी में जल्दी संयम धारण किया, यानी गर्भ में 7 महीने ही रहा, फिर 8 साल पूरे होने पर संयम धारण किया। संयम धारण किया तो पूर्व कोटि वाला मनुष्य हुआ, उसमें अंत समय में अंत अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व में चला गया, फिर 10,000 वर्ष के देव में उत्पन्न हुआ, पर्याप्ति पूर्ण करके सम्यक तो प्राप्त किया, फिर अंत में जाके मिथ्यात्व में गया, और फिर बादर पृथ्वी का एक में उत्पन्न हुआ। उसके बाद मरकर सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तकों में गया, और फिर वहां स्थिति कांडक घात किए। एक एक स्थिति कांडक घात का प्रमाण है पल्ले का असंख्यात भाग, उसके लिए अंतर्मूर्त लगता है। तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पल्ले के असंख्यात भाग को घटाते घटाते ऐसा पल्ले के असंख्यात भाग काल बिताया तो उसको हत समुत्पत्ति हुआ। फिर बाद में बादर पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न हुआ पर्याप्तों में, और इस प्रकार ये अनेक भव धारण करके, यानी बारंबार वो मनुष्य में आएगा, फिर इस ऐसे वो छूट जाएगा, 32 बार संयम धारण किए, उसकी उत्कृष्ट है, इसके बाद तो नियम से मोक्ष जाएगा ही। हाँ 32वें बार जब संयम धारण करेगा, ये अधिक से अधिक संख्या है। 4 बार कषायों का उपशम करके और पल्ले के असंख्यात वे भाग बार संयमा संयम और सम्यक्त्व का पालन करके संयम के बदले विसंयोजन चाहिए था, ऐसा मुझे भी लगता है। क्योंकि अनंत अनुबंधी की विसंयोजना भी असंख्यात बार होती है। तो पल्ल के असंख्यात विभाग अनंतानुबंधी की विसंयोजना, संयमा संयम और सम्यक्त्व का पालन करके अंतिम भव में एक पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। फिर वहां ऐसे ही लेना, 7 मास में ही निकला, फिर संयम धारण किया 8 वर्ष के होने पर, और पूर्व कोटि काल तक संयम का पालन किया, और थोड़ी आयु बाकी रही तब क्षपक श्रेणी चढ़ा। पहले क्यों नहीं चढ़ा?
तो
उतनी निर्जरा करानी थी, अधिक से अधिक निर्जरा होने के पश्चात इसको क्षपित कर्मवंशिक बनाना था। इसलिए क्योंकि जघन्य में जघन्य कब है? क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में। हो सकता है वो शुरू में भी क्षपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करके पूर्व कोटि तक 13वें गुणस्थान में रहता, परंतु हमें 10वें गुणस्थान के अंत समय में कम से कम कर्म प्रदेश है मोहिनी के, बाद में मोहिनी की सत्ता ही नहीं है, इसलिए पहले संयम में अधिक लंबे काल तक रखा। तो कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा होती रही, बहुत सारा कर्म उसने खिपाया है, और अंत में जाके क्षपक श्रेणी चढ़ी। तो ऐसे इसको कहते हैं क्षपित कर्मांशिक। मिनिमम पॉसिबल किसके होते हैं? तो ऐसे जीव के होते हैं। हाँ, ऊपर तो 32 नहीं 31 चाहिए, क्योंकि 32वें बार संयम धारण करेगा तो नियम से मोक्ष चला जाएगा। हाँ, अपन लास्ट भाव में उसको फिर 32वां करना है ना? नहीं, यहाँ की बात, यहाँ क्या लिखा, 32 बार धारण करके अंतिम भाव में पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, यानी उसके पहले 31 बार ही हुआ ना। अब जो उत्पन्न होगा अभी 32वें बार करेगा वो। क्योंकि 32वें बार अभी करना बाकी है, यानी अभी जो संयम को धारण किया बाद में जो लिखा है वो 32वें बार। नहीं नहीं नहीं, 8 वर्ष का होने पर जब संयम धारण किया, वो 32वां है, वो संयम है उसका 32वां है। अब यहां तक हमने पढ़ लिया था 14वें पृष्ठ पर, ये 19 नंबर का पैराग्राफ पढ़ेंगे अभी हम। हाँ, आपकी क्या शंका है? पृष्ठ 9, हाँ, नीचे चे 5वीं लाइन। हाँ, यहाँ ऐसा लिखा है, जब जब आयु बंद किया, यहाँ उत्कृष्ट प्रदेश तत्व का बात चल रही है, तो उसके अधिक बार उत्कृष्ट योग रहता है। जब आयु का बंद होता है तब योग जघन्य होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्कृष्ट योग से अधिक परमाणु का ग्रहण होता है। जब 7 कर्म बंद रहे हैं तो उत्कृष्ट योग हुआ, बहुत सारे कर्म परमाणु ग्रहण किए और उनका बंटवारा 7 में होगा। परंतु आयु बंद के समय जो कोई समय प्रबद्ध है वो 8 में बंटवारा होता है, तो मोहिनी के खाते में कम आता है, आयु में भी चला जाता है ना, तो उस समय जघन्य योग से करना, ताकि उसका आएगा कम और जाएगा उतना ही, तो उससे कुछ फायदा नहीं, उसका व्यय ही ज्यादा होगा, आय से व्यय ज्यादा होगा। इसलिए वहां कहते हैं, क्योंकि व्यय तो हर समय चल रहा है 8ों का, तो व्यय तो उतना ही रहा और आय कम हो गई, इसलिए वहां जघन्य योग से उसको ले लेना। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं आदेश से,
यहाँ पे योग है वो व्यय में भी योग लगता है चाहे वैसे कुछ योग का
नहीं, व्यय में योग नहीं लगता है।
तो यहाँ पे ज्यादा योग होगा तो ज्यादा परमाणु आएगा तो ज्यादा बंटवारा होगा तो उसके खाते में तो ज्यादा आने वाला है। पहले मैंने भी ये पूछा था तभी मेरे को भी ऐसी शंका हो रही थी कि कम योग के कारण कम परमाणु का ग्रहण हो रहा है और कम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आठ। अभी ज्यादा ग्रहण करेगा तो ज्यादा इसके खाते में भी ज्यादा ही आएगा ना?
नहीं आएगा
के खाते में
नहीं आएगा।
नहीं हमारा
नहीं नहीं हम निकालेंगे। जो आप पेज नंबर 7 पर जो टेबल दिया है वहाँ समय प्रबद्ध 65,536 मान लिया था और उसका कैसा बंटवारा होता उन्होंने करके बताया है। तो मुनि के खाते में 9,216 मिले और आयु में 6,208 मिले। अभी इसी समय प्रबद्ध को लेते हैं, इसी समय प्रबद्ध को हम 7 में बंटवारा करेंगे।
नहीं यहाँ पे मेरा क्वेश्चन
अभी निकालो ना, इसी समय प्रबद्ध को 7 में बंटवारा करके तो देखो, तो 65,536 को पहले क्या करेंगे,
7 से डिवाइड
करेंगे, 4 से भागेंगे और 16,384 अलग रखेंगे
और बाकी का 7 में बंटवारा।
हाँ और बाकी का 7वें बंटवारा करेंगे। करो अभी, हमने उसमें से 16,000 निकाले तो 49,152 आ गए। 49,152 अभी इसको 7 में डिवाइड करो, साथ ही साथ 49,700, 7×2=14, फिर 12, 7×1=7 और साथ ही साथ 49 यानी 7,000 और 21 आए ना, 21 कहो
7,020 आए,
21 से भी ऊपर 21.7 होता है, 21.49 एक सप्तमांश यानी 21 मान लो ना, 7,021 आए
बराबर।
ये तो क्या समान बंटवारा हुआ, बाकी कितने रहे?
बाकी अभी रहे
16,384। अब 16,384 को 7 से भाग दो, ये सॉरी 4 से भाग दो, जैसे यहाँ बंटवारा किया है 12,288 आएंगे वेदनीय में, 3,072 अभी 7,021 में 3,072 मिला दो, 10,093 हो जाएंगे। दस हजार हो गए ना,
10,092
और यहाँ कितने मिले थे 9,216, इतना डिफरेंस हो गया। और जो जाना है खिरने वाले तो उतने ही समझ लो, तो इसमें से ये कम आय होगी।
और मेरा क्वेश्चन क्या था कि हम लोग वहाँ पे गुणित कर्मांसिक को देख रहे थे, अभी योग ज्यादा होगा और ज्यादा परमाणु का ग्रहण करेगा तो सभी के खाते में ज्यादा आएगा, वहाँ पे योग कम हो जाता है तो
सभी के खाते में ज्यादा नहीं आएगा, वहाँ आयु के खाते में जाएगा ही नहीं, वो और बढ़ेगा सबके खाते में। ये बात हमने पहले भी धौला में पढ़ी थी,
पहले भी पढ़ी थी।
हाँ, आयु बंद के काल में जघन्य योग से ग्रहण करेंगे तो उसका जो
बंटवारा है,
हाँ, बंटवारा है उसमें जो आने वाला है वो कम होता है। तो ये जो कम प्रोपोर्शन है उसको मिनिमाइज करना है, कम को मिनिमाइज करना है। तो आयु बंध का काल भी छोटा करो, उसको जघन्य योग से भी करो। अब यहाँ हम शपित कर्मांशिक की बात कर रहे हैं, अब जो 14 नंबर पर देख रहे हैं उसका कारण तो समझ में आया आपको। देखो आदेश से अभी हम देख रहे हैं, क्षपित कर्मांशी अभी अभी हमने योग से याद किया, रिपीट किया, अब आदेश से नारकियों में क्षपित कर्मांश वाला जो जीव अंतर्मूर्त के द्वारा कर्मक्षय करेगा, ऐसा वह जीव उल्टा जाकर नारकियों में उत्पन्न हुआ। क्या कहना चाहते हैं? अभी हमने जो लिखा था ऊपर जीव जो जाके अंतर्मूर्त में क्षय करने वाला है, उसके बदले अभी हम उसको 31वां संयम मानेंगे, उसके बदले क्या किया? पूर्व कोटि तक संयमी रहा, फिर मिथ्या दृष्टि हुआ, नरकायु बांधी, नरक में चला गया। तो कहते उल्टा जाकर नारकियों में उत्पन्न उस प्रथम समयवर्ती नारकी के, यानी क्षपित कर्मांशिक जितना नियरली हुआ था, नियरली हम कहेंगे क्योंकि इतनी बार उसने सब करके, पहले इतनी बार संयम धारण किया, इतनी बार समय को प्राप्त किया, इतनी बार वो संयमा संयम धारण किया, अनंतानुबंधी की विषय योजना इतनी बार की, ऐसा जीव अब नारकी में गया तो उसके पहले समय में वो क्षपित कर्मांशिक, यानी उसके लिए तो वही
सातों नरक में से कोई भी नरक में ले सकते हैं।
हाँ, सातों नरक में कहीं भी
पहले नरक में कृतकृति वेदक ले सकते हैं।
नहीं, सातों नरकों में होगा, कहीं भी जा सकता है परिणाम के वश। उसकी सत्ता में कर्म प्रदेश कम थे, ऐसे जीव के परिणाम ऐसे बिगड़ गए, मिथ्या दृष्टि तो हुआ ही हुआ, नरक का बंद किया। सातों नरकों में से कहीं भी जा सकता है। प्रथम समयवर्ती नारकी के मुनि के जघन्य प्रदेश विभक्ति, देखो इसी प्रकार सातों नरकों लिखा है ना, सब तिर्यंश यानी कोई पर्याय बाकी नहीं रखी, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवों में जानना चाहिए तथा इसी प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त को क्यों छोड़ा?
वो तो दसवें में होगा।
मनुष्य पर्याप्तों में तो दसवें का अंत समय घटित होता है, तो वहीं पर क्षपित कर्मांशिक मिनिमम पॉसिबल है। और मनुष्य अपर्याप्तों में कैसा होगा? जो अभी क्षपित कर्मांशिक होते होते आया है और फिर संयम छूट जाएगा, मिथ्या तो में जाएगा, फिर वहां अपर्याप्त नाम कर्म भी बांधेगा, मनुष्य आयु भी बांधेगा और मनुष्य अपर्याप्त में जन्मेगा, तो पहले समय में वो क्षपित कर्मांशिक वाला जीव कम से कम प्रदेश वाला है। ऐसे क्षपित कर्मांशिक जीव सभी जीव समासों में पड़े हैं। अभी देखा ना, सभी तिर्यंश लिए, किसको छोड़ा? यहां सबको लिया, मनुष्य अपर्याप्त भी और देवों में भी, सब में ले लिए। तो निगोद में जा सकता है, तो प्रश्न ऐसा है ना, इतने 31 बार संयम, 4 बार उपशम श्रेणी, इतनी असंख्यात बार सारी 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 बातें होकर भी अभी अंतिम समय बाकी, उसके लिए चांस है ना। इन्हें जीवों के परिणाम कैसे होते हैं ना, मिथ्या दृष्टि के क्या अभी उसको विशेषार्थ। आदेश से जघन्य प्रदेश सत्कर्म का विचार करते समय ओग से जो क्षपित कर्मांश वाले की विधि पीछे बतलाए हैं, वह सब विधि यहाँ भी जाननी चाहिए। अंतर केवल इतना है, ओग से जहाँ अंतर्मूर्त में दसवें गुणस्थान के अंत समय को प्राप्त होने वाला था, वहाँ अंतर्मूर्त पहले यह उस मार्गणा को प्राप्त कर लेता है। अभी उस मार्गणा को प्राप्त करने के लिए जो कोई आवश्यक चीजें वो सब होगी वहां पर, जैसे नरक में जाने वाला है तो संयम से छूटकर मिथ्या तो में चला जाएगा, नरकायु बांधेगा, अंतर्मूर्त के बाद मर कर वहां नरक में चला जाएगा। उस मार्गणा को प्राप्त कर लेता है जिस मार्गणा में जघन्य प्रदेश सत्कर्म प्राप्त करना है। उदाहरणार्थ कोई ऐसा क्षपित कर्मांश वाला जीव है जो तदनंतर क्षपक श्रेणी पर ही चढ़ता, यानी चढ़ सकता था, पॉसिबिलिटी थी, पर एकदम परिणाम बदल जाने से वही तात्काल मिथ्यात्व में जाता है, और मरकर नरक में उत्पन्न होने के पहले समय में जघन्य प्रदेश सत्कर्म का स्वामी होता है। इसी प्रकार यथा योग्य विचार कर शेष सब मार्गणाओं में जघन्य प्रदेश सत्कर्म का स्वामी कहना चाहिए, जिससे कर्मों का संचय बहुत अधिक न होने पावे। नरक में लंबे काल तक रहने के बाद वहां तो प्रदेश बढ़ जाएंगे, हमें तो क्षपित कर्मांश वाला चाहिए। यहाँ मूल में जो यह कहा है कि जो अंतर्मूर्त में कर्मों का क्षय करेगा किंतु वह वैसा न करके जो लौट जाता है, सो यह योग्यता की अपेक्षा कहा है। वो करने वाला ही नहीं था, मगर पॉसिबिलिटी बता रहे, अर्थात देवगति में जाने वाला मिथ्या तो में जाना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है।
हाँ,
वो तो सभी में मनुष्यों में भी, तीर्यंचों में भी, सब में मिथ्या दृष्टि होना जरूरी है। देखो अपर्याप्त मनुष्य में जाना है तो क्या करेगा?
नहीं नहीं, अपर्याप्त उस पे बराबर है।
हाँ।
पर जब जो ऊपर के देव में जाता है, पहले
देवों की बात बता दी ना, देवों में जरूरी नहीं
है। नरक में भी कृतकृत्य वेदक को ले सकते हैं, पौनत्रिक में जाएगा तो मिथ्यात्व में होके जाएगा।
कृतकृत्य वेदक लेंगे तो नरकायु कल बांधी उसने,
पहले बांधी ना,
पहले बांधी तो संयम कैसा हुआ? आठ वर्ष में थोड़ी नरकायु कोई बांधता है, पूर्व कोटि वाला अंतर में बांधेगा। हम अपने बुद्धि से कोई नहीं चलेगे 40 में, समझ में आया क्या कहा उन्हें? मिथ्यात्व में जाकर ही, क्योंकि जिसने वो संयम धारण ही नहीं कर सकता, जिसने मनुष्यायु, तिर्यंचायु या नरकायु बांधी है, उसके संयम प्राप्त ही नहीं होगा, तो पहले बांधने का सवाल नहीं था, ऐसा नियम है। तो पहले आयु बांध के बाद में संयम धारण किया, ऐसा हो सकता नहीं। और आठवें वर्ष में संयम धारण कराना है, उसके पहले आयु बनती नहीं है, बनती नहीं, नहीं पूर्व कोटि वाला लिया इसलिए नहीं बनती है। ऐसा नहीं जैसे वो चेस खेलते हैं ना, एक चाल चलते तो दूसरे
छूट
जाता है, ऐसा ही। अर्थात क्षपित कर्मांश वाले के क्षपक श्रेणी पर चढ़ने के पूर्व समय में जितना द्रव्य सत्व में रहता है, उतना जिसका द्रव्य सत्व में हो गया है, ऐसा जू लेना।
तो लास्ट में जो हम लोग ने जो पूर्वकोटि आयु वाला लिया, वो नरकायु कभी बांध देगा? क्योंकि वो तो पूरा काल तक तो वो संयम में रहा।
हाँ, पूरा काल संयम में रहा, अंतिम अंतर मुहूर्त में संयम से छुटकर मिथ्यात्व में चला गया,
नरकायु
और वहाँ नरकायु बांधी, क्योंकि जाते ही उसके तो संकलेश परिणाम इमीडिएट नहीं हो गए, अंतर मुहूर्त लगेगा। हाँ। परिणाम संकलेश होने के लिए फिर अंतर मुहूर्त में नरकायु बांधी, बांधने के लिए भी अंतर मुहूर्त लगेगा, आयु बनते ही मरण नहीं होता है, उसके बाद भी अंतर्मूर्त चला जाएगा, फिर मरण होगा, ये सब मिलकर भी अंतर्मूर्त कहलाएगा। यानी यहाँ क्या कहना चाहते हैं, अंतर्मूर्त में क्षपक श्रेणी के दसवें के अंत में आने वाला जो जीव, उसके सत्ता में जितने कर्म प्रदेश है, उतने कर्म प्रदेशों की सत्ता सहित अभी ये नरक में उत्पन्न हुआ है, ऐसा जीव लेना। हाँ, उपशम श्रेणी हमने देखा ना, चार बार उपशम श्रेणी चढ़ के आया है, एक दो बार नहीं, ये बाकी सब कंडीशन से अप्लाई होते, क्षपक श्रेणी उसने नहीं चढ़ी है।
जिसने नरकायु बांधी है वो संयम धारण ही नहीं करता है।
अभी हमने कहा ना, संयम धारण किया, उसके बाद मिथ्यात्व में गया, फिर नरकायु बांधी, क्योंकि जिसने नरकायु बांधी है उसको संयम धारण ही नहीं कर सकता वो, अरे पांचवा गुणस्थान भी नहीं हो सकता उसको। और यहाँ बात तो आयु बांधने की है, और आयु बंद होगा पूर्व कोटि के वनथर्ड में, और हमने यहाँ संयम बताया है 8वें साल से,
इसीलिए मैंने पूछा ना।
हाँ, क्यों? इसीलिए उसकी तो निर्जरा अधिक करानी है, और क्षपित कर्मांश होने के बावजूद अभी मिथ्यात्व में गया और नरक में चला गया है। ये 7वें नरक के नारकी भी एक क्षपित कर्मांशिक होते हैं, हमने पहले ये भी देखा था। अरे, उनकी सत्ता में आहारक प्रकृति भी पड़ी हुई होती है, यानी जीवों के परिणाम कैसे पलट सकते हैं, ये कर्णानियोग के माध्यम से ख्याल में आता है। ख्याल में आई बात? हाँ, आहारक रिद्धि वाले जो होते हैं ना, आहारक शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग, प्रश्न उनका प्रश्न ऐसा कि कौन सी प्रकृति की बात अभी अभी आपने बताई। हाँ, तो वही की बात नहीं, अभी सूक्ष्म निगोदिया में कितने पड़े हैं, निगोद में भी क्षपित कर्मांशिक पड़े हैं। हाँ, सब पड़े होंगे सभी जगह, क्योंकि संयम धारण करते आहारक रिद्धि बांधी है, तो अभी तो गए ना मिथ्यात्व में, जाकर कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ तो एक बार सम्यक तो प्राप्त किया तो ऐसा लगता है ये कहाँ से आया, छिड़िया गए से। हाँ, देखो कालानुगम दो प्रकार का है। अब एक, पहले हमने स्वामित्व देखा है एक जीव की अपेक्षा, अब एक जीव की अपेक्षा काल देखेंगे। 13 नंबर है ना, अनियुक्त नंबर, तीसरे पेज से हम अनुयोग गिनते आए हैं। तो कालानुगम दो प्रकार का है। कालानुगम का अर्थ क्या होगा अभी यहाँ पर, काल लेने कौन सा काल देखेंगे, लगातार रहने का, उत्कृष्ट 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 लगातार रहे तो कितने काल तक, जघन्य 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 रहे तो कितने काल तक, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, दो कार का हुआ, दो प्रकार का है, ओवर आदेश। ओग से मोहनी की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का कितना काल है, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। ये कौन सा समय देखा था याद है, हाँ प्रतिभा ताई, उत्कृष्ट नारकी का अंतिम समय, उसके लिए वो सारी कंडीशन हमने पहले देखी थी, तो एक समय के लिए उसके उत्कृष्ट है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल, वर्ष पृथक्त्व, और उत्कृष्ट काल अनंत काल है। हाँ, क्योंकि उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं, हाँ। यानी वो जो सारी कंडीशंस है उसकी फुलफिल हुई नहीं है, तो अनुत्कृष्ट रहा अनंत काल तक।
ये वर्ष पृथक्त्व कैसे होगा?
हाँ, जघन्य काल वर्ष पृथक्त्व जो बताया है विशेषात में देखेंगे। वर्ष पृथक्त्व में ऐसा ले सकते हम, ये उत्कृष्ट के साथ है और अनुत्कृष्ट की बात है, उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट रहा,
हाँ,
और फिर उत्कृष्ट किया, ऐसा ही चाहिए ना, तो अनुत्कृष्ट का काल घटित होगा। विशेषार्थ में देखेंगे, देखो
इसका कम और कम काल नहीं बनता, नहीं सातवीं आठवीं नहीं,
नहीं।
सातवीं लाइन में, क्योंकि इससे इसका इससे
यानी वहाँ अनुत्कृष्ट उनके नरक में अनुत्कृष्ट अंदर मूर्त हो सकता है, परंतु ओघ में कैसे होगा? अच्छा, हाँ, ऐसा लिया नारकी जो है ना, उत्कृष्ट वाला लिया नारकी, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला नारकी, उसके बाद क्या होगा, उसका अनुत्कृष्ट हुआ तो सातवें नरक से निकलकर दो तीन तीर्यंश पर्याय किए, फिर उस मनुष्य में आया और मनुष्य में आया, संयम धारण किया और मोक्ष चला गया, यानी उसने अभाव ही कर दिया तो वर्ष पृथक तो हो गए। पृथक मैंने सात आठ नहीं लेना, जो अभी क्यों मिनिमम पॉसिबल है। अंतर्मूर्त वाले तीर्यंशों के बहु किए, फिर छोटी आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, आठवें साल में संयम धारण किया और क्षपक श्रेणी चढ़ के पार हो गया। गुणित कर्मोशिक जीव वर्ष पृथक में मोक्ष जाता है।
नहीं,
बहुत बार होगा
इसमें आगे बताए ना, इसके इतना काल के बाद ना नियम से उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला होता है,
यानी वो गुणित कर्मांशिक वाला फिर तिर्यंश होकर मनुष्य में क्षपक श्रेणी चढ़ता है। यानी छोटी आयु वाला मनुष्य होगा वो, क्योंकि उसकी आयु वहां तो कोई गदली घात होता नहीं है, चरम शरीर ही बना नहीं ना उसको। हाँ, आगे बढ़ेंगे। ये तो ओग से बताया, क्या बताया, उत्कृष्ट का कितना काल है, एक समय, जघन्य को उत्कृष्ट को उसको एक ही समय होता है, और अनुत्कृष्ट में जघन्य काल वर्ष पृथक्त्व है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, क्योंकि अनंत काल में उसने गुणित कर्मावशिक वो सारी कंडीशंस पूरी की ही नहीं, अनुत्कृष्ट रहा। आदेश से नारकियों में मुनि की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का कितना काल है, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये भी हमने देखा था। सातवें नरक में तो अंत में लिया था और अन्य नरकों में पहले समय, क्योंकि गुणित कर्मांशिक निकला है, दो चार भोग किए तीर्यंशों के और फिर आया है किसी विशिष्ट नरक में, तो उसके पहले समय में होगा उत्कृष्ट। फिर समय तो एक ही कहलाएगा ना, काल उसका एक ही समय का होगा। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल 33 सागर है।
ये उत्कृष्ट और अंतर्मूर्त तो मरण हो गया।
हाँ, अंतर्मूर्त वाला जो है उत्कृष्ट नारकी में, अनुत्कृष्ट अंतर्मूर्त जो बताया है, तो जो मानते अंतर्मूर्त पहले उसका उत्कृष्ट होता है, उनकी अपेक्षा से अनुत्कृष्ट का जो काल है जघन्य काल वो अंतर्मूर्त होता है और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, यानी कोई अनुत्कृष्ट ही रहा, उसको उत्कृष्ट हुआ ही नहीं है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए, पहली से लेकर छठवीं पृथ्वी तक मुनि की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल ओग की तरह जानना चाहिए, यानी एक समय, वो पहले प्रथम समय होता है, परंतु एक समय ये कथन तो घटित होगा। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम, अपनी अपनी जघन्य स्थिति, क्यों, एक समय के लिए उत्कृष्ट रहा
पहले समय में,
हाँ, बाद में अनुत्कृष्ट रहा, और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, किसका, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट था ही नहीं जब जन्मा है तब से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला ही है, तो पूरा अनुत्कृष्ट ही रहेगा, तो अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल पूरी स्थिति, और जघन्य काल अनुत्कृष्ट का जघन्य काल
एक समय कम
अपनी अपनी स्थिति, एक समय कम जघन्य स्थिति करना। लक्ष्मीबेन ख्याल में आई बात, जघन्य घटाना है तो जघन्य घटाना है तो जघन्य आयु ले लो और उसमें भी उत्कृष्ट का एक समय घटा दो, तो जघन्य अनुत्कृष्ट की जघन्य स्थिति कितनी हुई? एक समय कम अपनी जघन्य आयु, और अनुत्कृष्ट अधिक से अधिक काल रहे तो उत्कृष्ट आयु वाला लेना। हाँ, वहां उत्कृष्ट आयु करनी उसकी। पहले नरक में 10,000 वर्ष कम से कम, और अधिक से अधिक
एक सागर।
हाँ। अभी तीरियंचो में, ये नारकियों की बात हो गई। तीरियंचो में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल ओघ की तरह जानना, यानी कौन सा एक समय, और वो कौन सा होगा? क्षपित गुणित कर्मांशी कभी यहां उत्पन्न हुआ है तीरियंचो में, तो उसका पहला समय लेना। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। जैसे नारकी में एक समय घटाया था, वैसे यहाँ घटाना कि नहीं घटाना? क्या कहा? प्रश्न मेरा फिर सुन लो। नारकी में अनुत्कृष्ट का जघन्य काल देखा तो जघन्य आयु में से एक समय कम किया था। तीर्यंचो में अभी हम अनुत्कृष्ट प्रदेश का जघन्य काल देख रहे हैं, तो यहाँ एक समय घटाना कि नहीं घटाना उत्कृष्ट? नारकी इनमें उत्पन्न ही नहीं होंगे। हाँ। नारकी जीव अपर्याप्तों में उत्पन्न ही नहीं होंगे। पंचेंद्रियों में उत्पन्न होंगे, परंतु अपर्याप्तों में नहीं होंगे। पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तों में उत्पन्न होंगे, इसलिए ये एक समय नहीं घटा सकते। तो अनुत्कृष्ट का जघन्य कितना काल? तीर्यंचो में जघन्य में जघन्य आयु वाले कौन है? तो क्षुद्र भव वाले। और उत्कृष्ट काल अनंत काल है तीर्यंचो में रहने का। उत्कृष्ट काल पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिनी जीवों में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल ओघ की तरह है, यानी एक समय, जो पहला समय। और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल जघन्य स्थिति प्रमाण है। पंचेंद्रिय तीर्यंचों की जघन्य स्थिति कितनी है? पंचेंद्रिय तीर्यंच बोलो, अंतर्मूर्त, आपका क्या कहना है? क्षुद्र भव ग्रहण
नहीं, वहाँ पे तो हमने आगे घटित कर लिया, यहाँ पे
पंचेंद्रिय तीर्यंच बोला मैंने, पर्याप्त नहीं कहा। यहाँ तीन टाइप है, देखो क्या ये ऊपर क्या लिखा है, तीन दिए, पंचेंद्रिय तीर्यंच लिखा, उसका अर्थ था पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, फिर पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त कहे। हाँ, वहाँ हम कहेंगे मिनिमम आयु अंतर्मूर्त की है। पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिनी में भी मिनिमम आयु अंतर्मूर्त की, क्योंकि वे भी पर्याप्त जीव है। तो जघन्य काल जघन्य स्थिति प्रमाण,
और एक समय कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो
पंचेंद्रिय तीर्यंच जब हम अपर्याप्त क्षुद्र भव लेंगे वहाँ तो नहीं,
यहाँ पे पर्याप्त
पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्तों में एक समय कम
करना।
और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट विभक्ति का काल ओघ की तरह है, यानी एक समय के लिए ही है, क्योंकि नरक में से निकला संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हुआ, वहां से निकला अपर्याप्त में चला गया, तो पहले समय में। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, अभी यहाँ कम किया क्योंकि यहाँ मार्गणा का अनुत्कृष्ट लेना है, ओघ का अनुत्कृष्ट नहीं। पहले समय में उसका उत्कृष्ट होता है ना, उसकी अपेक्षा से उत्कृष्ट एक समय के लिए होता है। जब ओघ में घटित करना था तब तो हमने उसको नहीं घटाया था, जब तीर्यंचो में घटित करना था सामान्य तीर्यंचो में तब तो हमने नहीं घटाया था, क्योंकि वहां नरक से निकल सामान्य तीर्यंचो में अन्यत्र उसका उत्कृष्ट पाया जाता है। हाँ, देखो आपका जो प्रश्न है उसी को मैं अभी बता रही थी, प्रश्न फिर दोहरा देती हूँ। ऊपर जो तीर्यंचो में लिया था, तीर्यंचो वही बात पूछ रहे ना, कहाँ गया ऊपर? अनुत्कृष्ट का जघन्य काल बता रहे ना, तिरियंचो में अनुत्कृष्ट का जघन्य काल क्षुद्र भवन लिया तिरियंचो में, और अभी यहाँ पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्तों में, पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त ही बात है ना, जघन्य काल एक समय कम क्षुद्र भव ले लिए यहाँ पर, ऐसा क्यों?
क्योंकि वहाँ पे ओग की अपेक्षा बात है, तो वहाँ पे
नहीं ओग नहीं, हम तिरियंचों की भी अपेक्षा बात करें, गति मार्गणा में तिरियंचों में उत्कृष्ट किसको होगा? वहाँ सभी तिरियंच लिए, जिस किसी तिरियंचों को उत्कृष्ट है वो सभी तिरियंचों के लिए उत्कृष्ट होगा, तो सभी तिरियंचों में उत्कृष्ट कौन है? जो नरक से निकलकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का पहला समय वो तिरियंचों में घटित होता है। तो जब तिरियंचों में हम अनुत्कृष्ट की बात करेंगे, तो तिरियंचों में अनुत्कृष्ट की बात करते तो वहां तो घटित नहीं होता, वो एक समय तो हम माइनस नहीं करते क्योंकि उसकी मिनिमम आयु अंतर्मूर्त है, वहां घटित करना है तो अंतर्मूर्त में से एक समय कम करना पड़ेगा, परंतु उससे भी छोटी आयु वाले है ना, कौन है? क्षुद्र भव वाले। परंतु क्षुद्र भव वाले में वो पहला समय घटित नहीं होता है उत्कृष्ट वाला, इसलिए वहां तो नहीं लिया। अब हमारी मार्गणा बदल गई, तिरियंच कहने के बदले बता दिया कि अपर्याप्त तिरियंच या पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त, अपर्याप्त उनके लिए उत्कृष्ट कौन सा होगा? अब नरक में से निकला है, संगी पंचेंद्रिय में गया है, वहां अंतर्मूर्त से मरकर ये लब्धि अपर्याप्त में जन्मा है, तो इसके लिए ये उत्कृष्ट ही है पहला समय, इसको माइनस करेंगे तो एक समय कम क्षुद्र भव यहाँ तो लिया, ऊपर नहीं लिया, वहां तिरियंच लिए इन जनरल, और यहाँ अपर्याप्त लिए, तो अपर्याप्त मार्गणा में अन्यत्र से जो पहले समय आता है उसका उत्कृष्ट हो सकता है, उसके लिए उत्कृष्ट, सभी तिरियंचों के लिए उत्कृष्ट नहीं कहा, तो मार्गणा कौन सी है? इसलिए ये कथन में डिफरेंस है दोनों कथन में। यहाँ कहते एक समय कम क्षुद्र भव ग्रहण, क्योंकि मार्गणा का उत्कृष्ट पहले समय में होता है, इसलिए बाद में उसको अनुत्कृष्ट में डाला, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, ये उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त क्यों कहा लक्ष्मी? हाँ, किस किस स्थिति? लगातार अपर्याप्त 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 रहे तो अंतर्मूर्त ही होता है, इसलिए अंतर्मूर्त कहा उत्कृष्ट काल। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त को में जानना चाहिए, मनुष्य अपर्याप्त को में आने वाला भी उसके लिए, अभी मनुष्य इन जनरल कहेंगे तो उत्कृष्ट जो है वो तो नरक में से आया हुआ ले लेंगे, नरक में से आया तिरियंच में दो चार भव बिताए फिर मनुष्य हुआ, मनुष्य अपर्याप्तकों में जो उत्कृष्ट है वो भी उसी पद्धति से आएगा, परंतु उसके लिए उत्कृष्ट पहले समय में घटित होता है, और सामान्य मनुष्यों में उत्कृष्ट जो अपर्याप्त को लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर वहां तो जघन्य पूछेंगे सामान्य मनुष्यों को, सामान्य मनुष्यों में जघन्य पूछेंगे तो पूरा क्षुद्र भव लेंगे, जैसे सामान्य तिरियंचों में जघन्य के लिए अनुत्कृष्ट के जघन्य के लिए पूरा क्षुद्र भव लिया, और तिरियंच पंचेंद्रिय अपर्याप्तों के लिए एक समय कम क्षुद्र भव लिया, ऐसे ही मनुष्य अपर्याप्तों को लिए उस अपनी मार्गणा के लिए पहला समय उत्कृष्ट हो सकता है तो बाद में अनुत्कृष्ट होगा, तो ऐसा ही
समय भी एक समय कम नहीं कर सकते क्योंकि
सामान्य मनुष्यों में
से आता है वो तो अपर्याप्त भव बांध के
आता है, सामान्य मनुष्यों में जब हम उत्कृष्ट देखते हैं तो पर्याप्तों में हो सकता है उत्कृष्ट,
नहीं जो तिरियंच जो उत्कृष्ट विभक्ति वाला है जो नरक से आया है,
नरक से आया है
और तिरियंच में से जो मनुष्य में आता है वो पर्याप्त में भी आ सकता है अपर्याप्त में भी आ सकता है,
बरोबर,
तो उसका दोनों में पहला समय कम करना पड़ेगा ना।
हाँ,
क्योंकि वहाँ पे तो
हाँ, वहाँ एक समय कम कर,
हाँ,
कर
एक
दे,
समय कम करना पड़ेगा।
हाँ, जैसे तिर्यंचों में, सामान्य तिर्यंचों में हमने अन्यत्र जन्मता है,
क्योंकि
डायरेक्ट तो आता ही नहीं है, इसलिए दो तीन भाव बताए हमने, तिर्यंच के दो तीन भाव करके आने वाला जीव है, वो पर्याप्त में भी आ सकता है, अपर्याप्त में भी आ सकता है।
तो एक समय कम करना पड़ेगा,
एक समय कम। शेष तीन प्रकार के मनुष्यों में कौन से शेष रहे? सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं। मौनि की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल ओघ की तरह है, एक समय। उत्कृष्ट का काल पूछ रहे ना, यानी वो पहला समय बहु का। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल सामान्य मनुष्यों में एक समय कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, और मनुष्य पर्याप्त था मनुष्योनियों में एक समय कम अंतर्मूर्त, क्योंकि वो उनकी जघन्य आयु ली। और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, मनुष्य अपर्याप्त में अंतर्मूर्त लेना, और इनमें तो पूर्वकोटि पृथक्त्व लेना। देवों में मोनी की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल ओघ की तरह है, पहले समय में जो हमने देखा था ना, गुणित कर्मांशिक निकला है, कुछ भव किए हैं, फिर मनुष्य में आया है, फिर वो देव में चला। ये नीचे के देवों में जाने के लिए मनुष्य होने की भी जरूरत नहीं है। हाँ। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम 10,000 वर्ष, क्योंकि पहले समय में उत्कृष्ट रखा है तो एक समय कम 10,000 वर्ष, वहां की मिनिमम आयु लेके उसमें से एक समय कम कर दो। और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल 33 सागर। इसी प्रकार सब देवों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण है, और उत्कृष्ट काल संपूर्ण उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, जैसे हमने नारकियों में भी घटित किया था। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। हाँ, अभी इसी का विशेषार्थ पढ़ेंगे। ओग से और आदेश से मुनि की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल सर्वत्र एक समय कहने का कारण यह है कि सर्वत्र एक समय के लिए ही उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है। बाद में वो तो परिस्थिति बदल जाती है ना, तो जिसने मोनी की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति
8 समय का है ना, वो जो ऊपर और नीचे वाला एक समय है।
योग वगैरह ज्यादा कर करके उसका संचय हुआ था, और संकलेश भी उत्कृष्ट होना चाहिए था, वो सारी कंडीशंस जहाँ फुलफिल हुई तो नारकी के अंतिम समय में 7वें नरक के वहां उत्कृष्ट लिया। अब वैसा उसका संकलेश नहीं रहेगा, योग टर्न होके उपपाद योग में चला जाएगा, यहाँ का अधिक योग था, अब वहां उपपाद योग हो जाएगा, उस भव के अनुसार उसका योग भी पलट जाएगा।
योग का हमने यौमध्य देखा था, वहां पे मैक्सिमम काल 8 समय का देखा था।
हाँ, पर अभी उसके नरक से निकल कर वो तिर्यंच होगा,
हाँ,
तो उसका क्या उतने ही उत्कृष्ट रहेगा ख्याल में? संकलेश में भी चेंज हो जाएगा उसके।
नहीं, पर सभी जगह एक समय के लिए घटित किया है, तो वो 8 समय के लिए घटित
नहीं, 8 समय के ऐसा घटित नहीं होगा। उत्कृष्ट के लिए 8 समय नहीं होते हैं, उत्कृष्ट जो है ना 8 समय वाला, तो यव मध्य में 8 समय होते हैं,
साइड में
जहाँ उत्कृष्ट नहीं है,
मध्य में
जघन्य के लिए भी कम समय,
हाँ।
बीच वाले योग के लिए अधिक समय, 8 समय, फिर ऊपर भी 2 समय तक चला जाएगा। हाँ? जहाँ उत्कृष्ट योग होता है वो आठ समय के लिए रहेगा ही नहीं, मैक्सिमम उत्कृष्ट योग आठ समय के लिए रहेगा ही नहीं। हाँ, तो दो ही समय लिया उसने। यहाँ सबका ये योग का प्रकरण हुआ नहीं ना, आगे कहीं चर्चा होगी तो देखेंगे, योग नहीं है। अच्छा, अब कहते अच्छा योग है कि योग नहीं है। तीसरी लाइन, जिसने मोहिनी की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति को प्राप्त करने के बाद नरक से निकलकर और अंतर्मूर्त के भीतर तिर्यंच पर्याय के दो तीन भव लेकर अनंतर मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, वह यदि आठ वर्ष का होने के बाद ही क्षपक श्रेणी पर चढ़कर मोहिनी का नाश कर देता है तो उसके अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का वर्ष पृथक्त्व काल पाया जाता है। अनुत्कृष्ट का वर्ष पृथक्त्व कैसे होता है? फिर दोबारा नरक में तो नहीं ले जा सकते उसको, ले जाएंगे तो भी वहां की पूरी मिनिमम वो 33 सागर पार करने पड़ेंगे। यह अनुत्कृष्ट का सबसे कम काल है क्योंकि इसका इससे और कम काल नहीं बनता, इसलिए अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल वर्ष पृथक्त्व कहा। तथा इसका ओग से उत्कृष्ट अनंत काल कहने का कारण यह है, अधिक से अधिक इतने काल तक घूमने के बाद यह जीव नियम से उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति को प्राप्त कर लेता है। कितना घूमेगा?
अनंत काल कितना होगा?
पुद्गल परावर्तन को क्यों याद कर रहे हैं? नरक भव परावर्तन को ले लो, 7वें नरक में फिर आना चाहिए, पहले गया ही नहीं कभी, तो सारे चारों गति के वो परावर्तन करके फिर
तो बहुत लंबा काल
आएगा ही, ये कहना चाहते हैं। अधिक से अधिक कितने काल, क्योंकि उसके लिए सभी कंडीशंस होनी चाहिए फुलफिल, केवल नरक में आने से नहीं चलेगा। यह क्या कहते हैं, अधिक से अधिक कितने काल तक घूमने के बाद यह जीव नियम से उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति को प्राप्त कर लेता है।
पुद्गल परावर्तन में जाएगा, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पुद्गल का ग्रहण करके।
हाँ, उत्कृष्ट पुद्गल परावर्तन में चला जाएगा, नियम से उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उतने ही प्रदेश हो गए ना उसके, इन्हें कर्म द्रव्य परावर्तन में लेना। अब अनंत काल बीत गया है तो अधिक से अधिक कितने काल तक घूमने के बाद यह जीव नियम से गुणित वाले तो हो गए, क्षपित वाले में तो वो तो संयम आदि हो सकते हैं, नहीं की बात नहीं है, ये सभी जीवों के लिए घटित कराना चाहते हैं, हो सकता है ना, बहुत बार प्राप्त करके आए हैं अभी यहाँ पर घूमने के लिए। अब उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के विषय में दो मत है, एक यह कि गुणित कर्मांश वाले नारकी के अपनी आयु के अंतिम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, और दूसरा यह कि मरने के अंतर्मूर्त पहले होती है। प्रथम मत के अनुसार सामान्य से नरक में अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति प्राप्त होते समय वह जीव अन्य गति वाला हो जाता है। हाँ, दूसरे मत के अनुसार अंतर्मूर्त काल प्राप्त होता है, यही कारण है नरक में अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा है, यानी दूसरे मत के अनुसार वह अंतर्मूर्त प्राप्त हो सकता है, तथा उत्कृष्ट काल 33 सागर स्पष्ट ही है, यही व्यवस्था 7वें नरक में है। प्रथमादि नरकों में अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल, जो अपनी अपनी जघन्य स्थिति में से एक एक समय कम कहा है, प्रथमादि लिखा इसलिए एक एक कहा, यानी हर एक के लिए अपना एक समय कम, क्यों पहले समय में उत्कृष्ट हो सकता है इसलिए। सो इसका कारण यह है कि इन नरकों में उत्पन्न होने के पहले समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति संभव है, अतः एक समय कम किया, तथा उत्कृष्ट काल जो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण बतलाया है वह स्पष्ट ही है, यानी अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट आयु और अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अपनी जघन्य आयु में से एक समय कम। नरकों में ऐसा है, देवों में भी ऐसा ही देखा था हम। तीर्यंचों में अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल तीर्यंचों में लिया, जो खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण बतलाया है। इसका कारण यह है कि तीर्यंच सामान्य की बात है ना, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति लब्धि अपर्याप्त तीर्यंच के नहीं होती, अतः पूरा का पूरा खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण काल अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल बन जाता है। ये बात ख्याल में आई, हमने इस पर चर्चा भी की। तथा उत्कृष्ट काल जो अनंत काल बतलाया है सो स्पष्ट ही है। पंचेन्द्रिय तीर्यंच त्रिक के अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल, जो अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण बतलाया है, सो इसका कारण यह है यद्यपि इनके भव के प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति संभव है, इसलिए जघन्य आयु में से एक समय कम हो जाना चाहिए। पर जो जीव नरक से निकलता है उसके सबसे जघन्य आयु नहीं पाई जाती।
या कदलीघात से ही हो सकता होगा,
कदलीघात भी नहीं और वो आयु जघन्य नहीं पाई जाती। अतः अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल जघन्य आयु प्रमाण कहा और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। यहाँ उत्कृष्ट स्थिति से अपनी देखो इसलिए जघन्य आयु में से एक समय कम हो जाना चाहिए, बात है
नहीं।
हाँ
जगन्य में जगन्य
पर जो जीव नरक से निकलता है उसके सबसे जघन्य आयु नहीं पाई जाती है, अतः अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल जघन्य आयु प्रमाण कहा और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा, यह स्पष्ट ही है। यानी अनुत्कृष्ट का जघन्य काल जघन्य आयु, यानी नरक से निकल कर जो आयु मिलेगी वो आयु नहीं लेना है, उसके पश्चात वाली आयु जो छोटी होगी उसको लेना है।
पर पे
दो तीन भव अनुत्कृष्ट की बात चल रही, इसलिए पूरी आयु लेना, वहां तो उत्कृष्ट होगा नहीं, उसी पर्याय के दो भव लगातार ले सकते हम, जैसे पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त में जन्मा नरक में से निकलकर, उसके बाद फिर उसी में जन्मा तो वो छोटी आयु के साथ जन्मा, नरक में से निकलकर जन्मा था तो थोड़ी बड़ी आयु थी, अब छोटी है।
दो आयु भी क्यों लेना, अनुत्कृष्ट का हम जघन्य काल देख रहे
हैं, अनुत्कृष्ट का जघन्य
तो मनुष्य से अंतर्मूर्त वाली आयु में तीर्यंच पे उत्पन्न हुआ और वापस मनुष्य में आ गया, तो ये क्या आयु लेना पड़ेगा अनुत्कृष्ट के लिए।
ये उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति चाहिए ना उसके, पूरा अंतर्मूर्त क्यों लिया यही बात बता रहे।
हाँ, तो
पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक की एक आयु कितनी है जघन्य, पंचेंद्रिय पर्याप्त में मनुष्य सॉरी तीर्यंच नहीं अंतर्मूर्त, तो वहाँ तो पूरा एक भव लिया,
एक ही भव लिया, अंतर
एक भव लिया, पूरा भव लिया, अंतर्मूर्त वाला कहो या एक शुद्र भव ग्रहण करो, पूरा भव ले लिया वहां पर। और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। नरक से निकलकर जो होता है वो वाला उत्कृष्ट के बाद वाला अनुत्कृष्ट नहीं लेना, वो काल बड़ा है। अनुत्कृष्ट के लिए जरूरी नहीं कि वो उत्कृष्ट हो बाद में अनुत्कृष्ट हो जाए। अनुत्कृष्ट का ही एक भाव ले लिया उसका, तो अनुत्कृष्ट का एक भाव लेने के लिए उसी पर्याय में से उसी पर्याय में नहीं लाना है,
मनुष्य में से।
हाँ, मनुष्य में से लाना है। जैसे तिर्यंच में से तिर्यंच में ले जाए तो तिर्यंच ही रहा ना, अनुत्कृष्ट का काल लंबा हो जाएगा, हमें जघन्य चाहिए। हाँ, यहाँ उत्कृष्ट स्थिति से अपनी अपनी उत्कृष्ट काय स्थिति ले जाना चाहिए। पंचेन्द्रिय उपलब्धि अपर्याप्त तिर्यंच के जो अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण में से एक समय कम बतलाया है, सो यह एक समय उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का है। अब यहाँ मार्गणा की, मार्गणा का उत्कृष्ट लेना, इसे कम देने कर देने पर अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल आ जाता है, तथा पंचेन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच की उत्कृष्ट काय स्थिति अंतर्मूर्त है, यानी लगातार पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त में जन्म मरण करता रहे तो अंतर्मूर्त तक। अतः इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बतलाया है। इसी प्रकार लब्धि अपर्याप्त मनुष्य के अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल घटित कर लेना चाहिए। शेष तीन प्रकार के मनुष्यों में सामान्य मनुष्य की जघन्य स्थिति खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण है, और शेष दो की अंतर्मूर्त है। सामान्य मनुष्य की तो जो एक समय कम जघन्य स्थिति है वही अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल प्राप्त होता है, क्योंकि इसके इस आयु में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का एक समय सम्मिलित है। तथा शेष दो के जघन्य आयु अंतर्मूर्त में से एक समय कम कर देना चाहिए। क्योंकि यह एक समय उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का है, तथा इन तीन प्रकार के मनुष्यों के अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जो उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण बतलाया है, सो यहाँ स्थिति से अपनी अपनी काय स्थिति लेनी चाहिए, जो पूर्व कोटि पृथक्व लेते हम और फिर अंत में फिर उसको भूभूमि में ले जाओ। इसी प्रकार देवों में सर्वत्र अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण घटित कर लेना चाहिए, किंतु जघन्य काल कहते समय जघन्य स्थिति में से एक समय कम कर देना चाहिए, जैसे हमने नारकियों में देखा था, क्योंकि पहले समय में उत्कृष्ट हो सकता है, इसलिए क्योंकि यह एक समय उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति संबंधी है, आगे अनारक मार्गणा तक यही क्रम जानना चाहिए। अब तक हमने ये गुणित कर्मांशिक और उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति को देखा मार्गणाओं में। अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय की जघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। कब होगा? शपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में, तो उसका एक ही समय है ना अंतिम, तो एक समय ही घटित होगा। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का काल अनादि अनंत और अनादि शांत है, वो एक समय छोड़ो तो जो दसवें को प्राप्त करने वाला है उसका अनादि से लेकर अभी शांत हो गया, और जो नहीं प्राप्त करेगा वो तो अनादि अनंत है। अभव्य तो अनादि अनंत है ही है, और कितने भव्य भी जो कभी मुक्त नहीं होने वाले। हाँ, परंतु बताते समय अभव्यों के और भव्यों के कहेंगे, कहते समय ऐसा कहेंगे। आदेश से नारकियों में मोनी की जघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब हमने जो क्षपित कर्मांशिक जीव उसमें उत्पन्न होता है उसको लेना है, तो वो भी पहले समय में होगा। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट काल संपूर्ण 33 सागर है। पहले से लेकर सातवें नरक तक जघन्य प्रदेश विभक्ति का काल ओग की तरह है, यानी एक समय। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल संपूर्ण उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण। पांचों प्रकार के तिर्यंचों में मोनी की जघन्य प्रदेश विभक्ति का काल ओग की तरह है। इसका अर्थ है जो क्षपित कर्मांशिक जीव तिर्यंचों के किसी भी पर्याय में उत्पन्न होता है उसका एक समय के लिए वो जघन्य रहा। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल संपूर्ण उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। ये ख्याल में आई बात, पहला समय जघन्य का बाद करो जघन्य स्थिति में से, तो बाकी जो बचा है वो अजघन्य कहलाएगा।
ये पांचों प्रकार के तिर्यंच लिए
सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, योनिमति और पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त। इसी प्रकार चार प्रकार के मनुष्यों में जानना चाहिए। सामान्य देवों में नारकियों के समान भंग है। इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि अजघन्य विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी संपूर्ण उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। ये पहले भी बताया था अन्यत्र भी, यानी वो जो क्षपित कर्मांशिक जीव क्षपक श्रेणी चढ़ने के बदले अभी देव में उत्पन्न हुआ है तो एक समय के लिए जघन्य होगा। विशेषार्थ ओग से और आदेश से सर्वत्र मुनि की जघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि स्वामित्व अनुगम के अनुसार बतलाए हुए क्रम से सर्वत्र एक समय के लिए ही जघन्य प्रदेश संचय होता है। वो उसे अजघन्य विभक्ति का काल भव्य की अपेक्षा अनादि शांत और अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत है, क्योंकि अभव्य के कभी जघन्य प्रदेश विभक्ति नहीं होती। आदेश से सब गतियों में अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय, जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण है, क्योंकि आदेश से सब गतियों में जब लेते हैं तो एक समय वाला वो कम करना है उसका, जघन्य को कम करके अजघन्य होता है वो अपनी अपनी। तो मनुष्यों में भी घटित कराओ ना, तो दसवें में जघन्य होने के बाद में वो अजघन्य नहीं हो सकता, इसलिए उसके पहले जो अजघन्य है उसी को लेना। तो क्या कहा, एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण है। ये मार्गणाओं का जघन्य बता रहे हैं ना, इसलिए मार्गणाओं में जघन्य कब होगा, क्षपित कर्मांशिक सपना करने के बदले इसमें उत्पन्न हुआ है
पहले समय।
तो पहले समय में जघन्य, बाद में अजघन्य, और उत्कृष्ट काल अपने अपने संपूर्ण उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। ये काल की बात हो चुकी, अब अंतर बताएंगे। 14 नंबर है कौन सा है 14, इसमें 14 नंबर का अनुयोग है। अंतर दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट से प्रयोजन है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोनी की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल कितना है? जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल है। देखो, पहले हमने अनुत्कृष्ट का काल वर्ष पृथक्त्व कहा, वो अनुत्कृष्ट का काल उत्कृष्ट का अंतर नहीं होता वहां पर, क्योंकि अनुत्कृष्ट करने के बाद उसने क्षपणा ही कर दी, इसलिए तो वर्ष पृथक्त्व घटित होगा। परंतु एक बार उत्कृष्ट होके फिर दोबारा उत्कृष्ट होने के लिए हमें अंतर कितना है, तो मिनिमम भी अनंत काल है, क्योंकि हमने देखा ना वो सारी कंडीशंस उसमें पूरी होनी चाहिए। बादर एक इंद्रिय में इतना काल घूमा, फिर वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, अधिक योग वाला हुआ, सब जाके नरक में उत्पन्न हुआ। अथवा जघन्य अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि गुणित कर्मांश के कारणभूत परिणामों से भिन्न परिणामों में संचरण करने वाला करने का जघन्य काल असंख्यात लोक प्रमाण है। क्या कहते हैं, परिणाम कितने हैं असंख्यात लोक प्रमाण? तो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग परिणाम हुए और फिर वापस ये परिणाम हुआ, तो असंख्यात लोक प्रमाण अंतर घटित कर रहे उस अपेक्षा से। अनुत्कृष्ट विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है, एक समय के लिए उत्कृष्ट हुआ, उसके पहले भी अनुत्कृष्ट था और बाद में भी अनुत्कृष्ट रहा। आदेश से नारकियों में मोह की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतर नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है।
ठीक है, बीच में भी उत्कृष्ट हो सकता है। हमने तो
अनुत्कृष्ट का,
क्योंकि हमने तो इसे देखा पहले समय में उत्कृष्ट होगा,
नहीं ये लेना ना दूसरे मत के अनुसार ये घटित होगा।
अच्छा,
नारकी के अंतिम समय में नहीं लेकर
अंतर्मूर्त पहले,
अंतर्मूर्त पहले उसने उत्कृष्ट किया एक समय के लिए, पहले अनुत्कृष्ट था बाद में भी अनुत्कृष्ट हुआ तभी घटित होगा अनुत्कृष्ट का अंतर। इसी प्रकार सातवें नरक में जानना चाहिए, पहले से लेकर छठे नरक तक मोनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट विभक्ति का अंतर नहीं है, ये बता दिया। देखो इसी प्रकार सब तिर्यंच, सब मनुष्य, सब देवों में जानना चाहिए, इस प्रकार अनाहारी पर्यंत जानना चाहिए। इसी का विशेषार्थ देखते हैं। ओग से उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल है। देखो, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति यानी वो नारकी के अंतिम समय में होता है, उसको लिया ओग से भी, वो बादर एक इंद्रिय में यहाँ गया, फिर त्रस में आया, 2000 सागर तक घूमा, फिर लास्ट में नरक में गया, वगैरह वगैरह। क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति गुणित कर्मांशिक जीव की होती, उसको क्या कहते हैं, गुणित कर्मांशिक जीव। और एक बार उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होकर पुनः इसे प्राप्त करने में अनंत काल लगता है। अथवा उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतरकाल असंख्यात लोक है, कारण का निर्देश मूल में किया ही है, और उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल है, यह स्पष्ट ही है। क्रम से अलग अलग परिणाम होते होते एक एक बार ही हुए और फिर इस पर आया, ऐसा लिया हुआ। तथा उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल एक समय है, अतः अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय कहा है, क्योंकि अनुत्कृष्ट विभक्ति के बीच में एक समय के लिए उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति को हो जाने से एक समय का अंतर पड़ता है। आदेश से सामान्य नारकियों में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतर नहीं है, क्यों नहीं है?
पहले समय में होता है ना, पीछे तो।
हाँ देखो, यह क्या कहते हैं, सामान्य नारकियों में उत्कृष्ट किसको है, वो सातवें नरक के अंतिम समय में, वो अंतिम समय के बाद तो अन्य पर्याय में चला जाएगा, उसका अंतर कैसे होगा? नहीं हो सकता।
अंतर्मूर्त वाले
जो कोई अंतर्मूर्त पहले मानते क्या उनका भी होगा?
नहीं, उसका अंतर नहीं होगा।
वो अंतर नहीं, उत्कृष्ट तो होगा पर बाद में उसका अनुत्कृष्ट रहेगा, दोबारा उत्कृष्ट तक नहीं आएगा वो। तो यहाँ कहते हैं नारकियों में, सामान्य नारकियों में भी अंतर नहीं है, क्योंकि अंतर तब हो सकता है जब उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के बाद अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होकर पुनः उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति हो, किंतु ऐसा किसी भी गति में नहीं होता, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के अंतर को प्राप्त करने के लिए विविध गतियों का आश्रय लेना पड़ता है। हमने देखा था ना उसको, बादर केंद्र में रहा, त्रसु में रहा वगैरह वगैरह। अतः किसी भी गति में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, ये सभी गतियों के लिए बता दिया। सामान्य नारकियों में अनुत्कृष्ट क्या कहते हैं, सामान्य नारकियों में अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है, क्योंकि सातवें नरक में अंतिम अंतर्मूर्त के प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति मानी गई है। ये एक मत है ना ऐसा, तो वहीं पर एक समय घटित होगा अनुत्कृष्ट का अंतर। किंतु जिनके मत से अंतिम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है उसके अनुसार यह अंतर नहीं बनता, इसी प्रकार सातवें नरक में समझना चाहिए। पहली से लेकर छठी पृथ्वी तक तथा तिर्यंच मनुष्य और देवों में सर्वप्रथम जन्म लेने वाले गुणित कर्मांश जीव के जन्म लेने के प्रथम समय में ही उत्कृष्ट विभक्ति होती है, अतः वहां न उत्कृष्ट विभक्ति का अंतर होता है और न अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति पहले समय में होती है परंतु उसका अंतर तो नहीं हो सकता है, हाँ बाद में तो अनुत्कृष्ट ही हो जाएगी। इसी प्रकार अनाहरक मार्गना तक अंतरकाल घटित कर लेना चाहिए। अब जघन्य से प्रयोजन है, यानी जघन्य का अंतर होगा कि नहीं होगा? शपक में तो होगा ही नहीं। हाँ,
अन्य मार्ग में
तो निर्देश दो प्रकार का है, ओ और आदेश। ओग से मोने की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए, यानी अन्यत्र भी उसका अंतर नहीं पाया जाएगा। विशेषा ओग से क्षपित कर्मांश वाले जीव के दसवें गुणस्थान के अंत में मोनी की जघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, उसके बाद मोह का सद्भाव नहीं रहता, अतः न जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतर प्राप्त होता है और न अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतर प्राप्त होता है। आदेश से जिन गतियों में क्षपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान की प्राप्ति संभव नहीं है, उनमें क्षपित कर्मांश वाला जीव मोह का क्षपण न करके उसके पूर्व ही लौट कर जिस जिस गति में जन्म लेता है उसके प्रथम समय में ही जघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। अतः आदेश से भी दोनों विभक्तियों का अंतर नहीं होता। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल क्यों संभव नहीं है, इस बात को उक्त विधि से घटित कर जान लेना चाहिए। यानी अन्यत्र भी उनका दोनों का अंतर नहीं होता, न जघन्य का होता है तो जघन्य का नहीं होगा तो अजघन्य का भी नहीं, यानी एक समय के लिए जघन्य हो जाए और फिर अजघन्य हो तो ही अजघन्य का अंतर घटित होता था, इसलिए उसको अनादि से लेकर शांत कहा। जब सांत कह दिया तो फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय, ये कौन से अनुयोग है? 15 नंबर। प्रदेश विभक्ति के अनुयोगों की चर्चा चल रही है। तो अभी हमने एक युग की अपेक्षा स्वामित्व भी देखा, काल भी देखा और अंतर भी देखा। अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय बताएंगे। तो वो दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट से प्रयोजन है, उसमें अर्थपद है, अर्थपद है नहीं, उसका जो तथ्य वाक्य जो है, उसका जो कोई रूल है वो बताएंगे, नियम। जो उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव है वे अनुत्कृष्ट प्रदेशों की अविभक्ति वाले होते हैं, और जो अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव है वे उत्कृष्ट प्रदेशों की अविभक्ति वाले होते हैं। इस अर्थपद के अनुसार निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। अब यहाँ भंग बताएंगे कि ओग से मोने की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति की अपेक्षा कदाचित सब जीव अविभक्ति वाले होते हैं, यानी किसी के भी सत्ता में उत्कृष्ट प्रदेश है ही नहीं, ऐसे हो सकता है। कदाचित अनेक जीव अविभक्ति वाले और एक जीव विभक्ति वाला होता है, कदाचित अनेक जीव अविभक्ति वाले और अनेक जीव विभक्ति वाले होते हैं। अनुत्कृष्ट के भी विभक्ति को पूर्व में रखकर 3 भंग होते हैं। उत्कृष्ट की अपेक्षा कथन किया, अब अनुत्कृष्ट के बाद, तो अनुत्कृष्ट को अभी रखकर उसकी अपेक्षा बात करेंगे। तात्पर्य कि अनुत्कृष्ट विभक्ति की अपेक्षा भंग कहते समय जहाँ अविभक्ति पद रखा है वहाँ अनुत्कृष्ट की अपेक्षा विभक्ति पद रखना चाहिए। वहाँ क्या रखा था? कदाचित ऐसा होता है कि तो उत्कृष्ट की अविभक्ति वाले हैं सर्वदा,
सभी जीव,
तो हम कहेंगे सभी जीव अनुत्कृष्ट की विभक्ति वाले हैं, हो सकता है ना ऐसा? इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, 3 प्रकार के मनुष्य और सब देवों में जानना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति में से प्रत्येक की अपेक्षा 8 भाग 8-8 भंग होते हैं। जो सांतर मार्गना है उसमें ये सभी भंग हो गए, सभी पॉसिबिलिटीज हो गए। इस प्रकार अनारी पर्यंत ले जाना चाहिए। इसी का विशेषार्थ देखते हैं। जिनके उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है उनके उस समय अनुत्कृष्ट प्रदेश संचय नहीं होता, और जिनके अनुत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है उनके उस समय उत्कृष्ट प्रदेश संचय नहीं होता, यह अर्थपद है। इसको आधार बनाकर उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति की अपेक्षा से 3 और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति की अपेक्षा से 3, कुल प्रत्येक की अपेक्षा 3-3 भंग मूल में बतलाए गए हैं। यानी वो नाम चेंज किए, उत्कृष्ट के अविभक्ति वाले हैं और यहाँ कहेंगे अनुत्कृष्ट की विभक्ति वाले सभी चीज। कथन में डिफरेंस है, बात तो वही कहना चाहते हैं। उत्कृष्ट विभक्ति वाले प्रदेश विभक्ति वाले जीव कम होते हैं और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव अधिक होते हैं, तथा ऐसा भी समय होता है जब उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला एक भी जीव नहीं होता। अतः जब सब जीव मोह की उत्कृष्ट विभक्ति वाले नहीं होते तब सब जीव मोह की अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले होते हैं, और जब एक जीव मोह की उत्कृष्ट विभक्ति वाला होता है तब शेष जीव मोह की अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले होते हैं। जब अनेक जीव मोह की उत्कृष्ट विभक्ति वाले होते हैं तब अनेक जीव की अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट की विभक्ति और अविभक्ति की अपेक्षा तीन तीन भंग होते हैं, किंतु मनुष्य अपर्याप्त चूंकि सांतर मार्गना है, अतः उसमें उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति की अपेक्षा आठ और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति की अपेक्षा आठ भंग प्राप्त होते हैं, क्योंकि मार्गना ही सांतर है नहीं, उसमें उत्कृष्ट को रखना एक अनेक करना, एक पर अनुत्कृष्ट के फिर एक अनेक लगाना, फिर उत्कृष्ट को अनेक रखना, उस पर भी अनुत्कृष्ट के एक अनेक लगाना, चार चार आठ भंग हो जाएंगे। यथा कदाचित सब लब्धिया पर्याप्त मनुष्य उत्कृष्ट प्रदेश अविभक्ति वाले होते हैं, एक नंबर। कदाचित सब उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले होते हैं, दो। कदाचित एक उत्कृष्ट प्रदेश अविभक्ति वाला होता है और कदाचित एक उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला होता है, ये चार एक संयोगी भंग है। अब दो संयोगी भंग भी इतने ही होते हैं, इस प्रकार ये सब आठ भंग हुए। अनुत्कृष्ट की अपेक्षा से भी इतने ही भंग जानना चाहिए, इस प्रकार सांतर और निरंतर मार्गणाओं का ख्याल करके जहाँ जो व्यवस्था लागू हो वहाँ उसके अनुसार भंग ले जाना चाहिए। जहाँ सांतर मार्गणाएं हैं उसमें तो आठ आठ भंग करने। सांतर मार्गणा किसको कहते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा बात है ना, कभी ऐसा होगा कि वो मार्गणा है ही नहीं, ऐसे हो सकता है कुछ काल तक। अब यहीं रुकते हैं। हाँ हाँ, ये सांतर मार्गणा में जैसे मनुष्य अपर्याप्त, ये सांतर मार्गणा है, यानी मार्गणा कभी होती और कभी नहीं भी होती। होगी तो कितने जीव हो सकते हैं? एक जीव उसमें है, हो सकते दस है, हो सकते असंख्यात है, तो दस है तो दस के दस सारे उत्कृष्ट वाले, ऐसा भी हो सकता है, ये कहना चाहते।
पर उत्कृष्ट वाले का तो एक ही समय है,
एक जीव की अपेक्षा एक समय है।
नहीं पर तो वही जीव दूसरे समय
एट ए टाइम ज्यादा जीव आए ना वहाँ पे।
अच्छा,
एक साथ जीव। चार जीव आए नरक से तो अनेक हो गए ना, वो गुणित कर्मांशिक वाले चार जीव नरक में से निकलकर अभी वो तो विशेष पर्याय में एक साथ आ गए, तो पहले समय में सबका उत्कृष्ट है, या ऐसा भी लगाएंगे हम नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट है ना, एक साथ आने की भी जरूरत नहीं है, लगातार आए एक के बाद एक, तो उसका नाना जीवों की अपेक्षा चार समय उन तक उत्कृष्ट रहे। यहाँ तो हम भंग देख रहे, काल नहीं देख रहे, काल में उसको याद करेंगे, यानी वो उत्कृष्ट है ना, वो एट ए टाइम कितने हैं उत्कृष्ट वाले, किसी एक समय में लेना है,
एक ही समय की
अपेक्षा। हाँ, एक समय लेना है तो नाना जो उसी समय में आए उसमें उत्कृष्ट वाले उसको लेना। हाँ, दो आएंगे दस आएंगे एक साथ तो भी नाना जी, और उसका काल घटित करना है तो एक के बाद एक लेना है। अब यहीं रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो। मैं भाई